का तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े हर द्वार खोल के, गगन कहे विजय भव विजय भव, गगन कहे विजय भव, भटकी है रोशनी है छटपटा रही रोशनी, गगन कहे विजय भव
शांति। तो आज से 108 दिवसीय बेकारों पर जीत की यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। बठियां हम लंबे काल से सभी करते आ रहे हैं, कुछ ना कुछ परिवर्तन तो होता ही है निश्चित तौर पर। जो जितना अटेंशन रखता है उतना ही उसको उसका फायदा होता है, उतना ही जीवन में परिवर्तन करने की शक्ति बढ़ती है और आत्मिक शक्ति बढ़ती है, कुछ नया करने के रास्ते खुलते हैं, एक नई ऊर्जा का संचार होता है। तो ये जो बठ्ठी है चार तथ्यों पर आधारित, मुख्य रूप से जो कल बताया था, सबसे पहले जो भी यहाँ टॉपिक होगा उसकी परिभाषा क्या है, और दूसरा जो विकार है कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें वो विकार उभर कर आते हैं, तीसरा उस विकार से संबंधित भगवान के महावाक्य क्या हैं, बाबा के महावाक्य क्या हैं, और चौथा है उस विकार पर विजय कैसे प्राप्त करें। तो इन चार बिंदुओं के ऊपर आधारित इस भट्ठी का सारा सार होगा, और जो भी यहाँ सुनाने आएगा वो सभी इन चार बिंदुओं पर अच्छी तरह से चिंतन करके आएगा, क्योंकि जब तक हम खुद उसका स्वरूप नहीं बनते हैं तब तक ना ही हमारा परिवर्तन होता ना ही दूसरों को उसका लाभ होता है। और वही केवल जो सुनाने वाला वो ही चिंता ना करे बल्कि सामने वाले भी उस दिन सारा उसी पर पूरा ध्यान फोकस करे, नहीं तो क्या होता है हम सुनते हैं लंबे समय से सुनते आ रहे हैं, जैसे यहाँ से बाहर जाते हैं समन संपर्क में आते हैं अपने कर्म क्षेत्र पर जाते हैं तो वही पुरानी स्मृतियाँ वही पुरानी परिस्थितियाँ वही हमारी दिनचर्या, हम उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं इतना गहराई में चले जाते हैं कि ये चीज़ें सारी किनारे रह जाती हैं। फिर केवल ऊपर ऊपर से एक हल्की सी संतुष्ट रहती है कि हाँ हम कुछ करते हैं, लेकिन जो वास्तविक रूप से हमारा एक परिवर्तन होना चाहिए वो महसूस नहीं होता है, ना ही वो एक सच्ची खुशी की अनुभूति होती है, वो एक हल्की सी उदासी बनी रहती है अंदर में। तो ये भट्टियां हमें सब प्रकार के बंधनों से मुक्त करने वाली है, आत्मा को स्वतंत्र करने वाली है, सच्ची स्वतंत्रता देने वाली है। तो बड़ा गौर से गहराई से स्वयं के ऊपर हमको फोकस करते हुए इनका हमको पूरा फायदा लेना है, क्योंकि समय बहुत कीमती है। जिस तरीके से संगम युग का समय पल पल बीतता जा रहा है, देख रहे हम संसार की परिस्थिति में कैसे बढ़ती जा रही है, तो ऐसा ना हो कि समय बीत जाए और हम इन विकारों के वश में अपने जीवन को ऐसे ही खो दे जो हमारी असली संपत्ति है, उससे हम वंचित रह जाएं। तो आज का जो विषय है काम विकार, पहला दिन भट्टी का, ये मुख्य विकार है काम विकार। काम विकार क्या होता है? इस यज्ञ की जो आधारशिला है, या यूं कहें कि भगवान भी जब इस धरा पर आया हम सबको काम विकार की जंजीरों से छुड़ाने के लिए, सारे ज्ञान का सार अगर देखा जाए तो एक ही बिंदु पर आधारित है, संपूर्ण पवित्रता। जन्म जन्म से जो आत्मा के ऊपर विकारों की कट चढ़ी हुई है, अनेक प्रकार की विसंगतियां हैं, अशुद्धियां हैं, कई विकारों से आत्मा ग्रसित हो चुकी है, उससे मुक्त करने आया है। इसलिए बाबा कहते हैं काम और क्रोध, काम को क्या कहा जाता है? बच्चू बादशाह, और क्रोध को कहा जाता है पीरू वजीर। तो ये विकार ऐसा बादशाह है जिसकी चकाचौंध में, जिसके आकर्षण में आत्मा जन्म जन्म से इतनी प्रभावित हो गई है कि सारा दिन शरीर का ही चिंतन करती रहती है, चाहे वो स्वयं के शरीर का या दूसरे के शरीर का, क्योंकि संस्कार बहुत गहराई से अंदर जम गए हुए हैं, इतनी गहरी जड़ें चली गई हैं कि उन तक पहुंचना बड़ा मुश्किल सा लगता है। हम केवल ऊपर ऊपर तक थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं, लेकिन विकार बहुत गहरे तल में चले गए हुए हैं। जैसे बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन करो, गहराई में जाओ तो रत्न प्राप्त होंगे, अगर ऊपर ऊपर रहते हैं तो महसूस तो नहीं होती उस चीज की। तो ये विकार भी ऐसे ही हैं, बहुत गहरे चले गए हैं, और उस गहराई तक पहुंचने के लिए बहुत गहरा चिंतन चाहिए, बहुत गहरी साधना चाहिए, बहुत गहरी तपस्या चाहिए, और उसके लिए ये हम सबका परम सौभाग्य है कि हम सबको इस तरह का वातावरण मिलता है और इस तरह का चिंतन करने का एक मौका मिलता है, संगठित रूप से इन विकारों से मुक्त होने के। अलग अलग महान आत्माओं के विचारों से हम अवगत होते हैं, मार्गदर्शन मिलता है, ये गॉड ब्लेसिंग है, नहीं तो किसको क्या पड़ी हुई है सवेरे सवेरे उठ के चिंतन करने की। लेकिन एक कृपा है, बाबा की कृपा है, आशीर्वाद उसके वरदान है, जो हम सबको थोड़ा बहुत इस चीज से नजदीक लाते हैं और जिससे हम मुक्त होते जाते हैं। तो यज्ञ की स्थापना काल में ही जो भी सारा विरोध हुआ काम विकार के ऊपर, संसार एक तरफ हो गया और बाबा एक तरफ, लेकिन फिर भी संसार वालों ने तो कहा बाबा आप सिर्फ एक पवित्रता को छोड़ दो तो आपके बहुत सारे अनुयायी हो जाएंगे, हम भी सहयोगी बन जाएंगे, लेकिन बाबा टस से मस नहीं हुए, क्योंकि ये मुख्य आधारशिला है जिससे सारी मानवता करा रही है, पीड़ा है, पीड़ित है, दुख है। तो काम विकार ये आत्मा का शत्रु है, बाबा कहते हैं काम विकार महाशत्रु है, और शत्रु से सावधानी रखना बहुत अनिवार्य है। शत्रु किस वेश में कब आ जाए कोई भरोसा नहीं उसका। इसको कभी भी किसी सूरत में माफ नहीं किया जा सकता है। दूसरे विकारों के लिए बाबा थोड़ा हल्का कह देते हैं, लेकिन क्रोध के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, काम के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। तो इस काम विकार पर हमको कोई रहम नहीं करना है। भारत में देखेंगे कई लड़ाइयां हुई, लेकिन भारत के सम्राट अपने रहम दिल से शत्रुओं को कई बार माफ़ करते रहे, और जितनी बारी माफ़ किया उतनी बारी उनको फिर वापस मुंह की खानी पड़ी, हार का सामना करना पड़ा। इसलिए अभी एहसास में नहीं कि शत्रुओं पर हम थोड़ा भी रहम करें, इसलिए इस पुरुषार्थ मार्ग में थोड़ा निर्दयी बनना पड़ेगा, एकदम कठोर दिल बनना पड़ेगा। जितने भी संसार में राजाइयां गई हैं, राजाओं की, केवल काम विकार के कारण गई हैं। और जितने भी यज्ञ से ब्राह्मण भी गए हैं, उनकी राजाई भी किसके कारण गई? काम विकार के कारण। तो ये काम विकार महाशत्रु है। बाबा कहते काम विकार पांचवी मंजिल से गिरने जैसा है। तो हमारे इस ब्राह्मण जीवन का जो मुख्य फाउंडेशन को मजबूत करने की जो नींव है, पवित्रता है, अगर उसमें अगर काम विकार के सूक्ष्म अंश भी रह जाते हैं तो जो वो इमारत है वो कमजोर रह जाती है, और वो कभी भी थोड़ी सी परिस्थितियों में आने से कभी भी ध्वस्त हो सकती है। थोड़ा सा भी ट्रिगर मिलता है तो गिर सकते हैं। इसलिए काम की परिभाषा अगर देखा जाए तो काम अर्थात आत्मा की हत्या करना। सारा दिन अगर देखा जाए, जैसे कहा जाता है आत्मा चेतन है शरीर जड़ है, लेकिन अभी उल्टा हो गया है। आत्मा जड़ हो गई है सब, और शरीर चेतन है। क्यों? क्योंकि सारा दिन हमारा जो चिंतन है वो देह के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है, देह को जाने सवारने में लगा हुआ है, जिसके लिए संसार में कितना तामझाम है। ब्यूटी पार्लर, कहीं आत्मा के लिए कोई ब्यूटी पार्लर खुला हुआ? कहीं सारा देह के लिए है, केवल यहां ये बाबा ने खोला हुआ है। नेचर क्योर सेंटर। तो सारा संसार अगर देखा जाए एक ही विकार की गिरफ्त में है, सबसे मुख्य विकार काम की गिरफ्त में है, और उसके लिए बहुत सारे ऐसे ट्रिगर हैं जो समय समय पर काम को और उत्तेजित करते जाते हैं, जिससे आत्मा और उत्तेजित हो जाती है। ऐसे समय समय पर परिस्थितियों का संसार में निर्माण किया जाता है, और जैसे एक कमाई का सोर्स हो गया है, जैसे युवा पीढ़ी कहा जाता नशे की गिरफ्त में है, लेकिन उससे भी ज्यादा काम की गिरफ्त में है। नशे का व्यापार तो संसार में दिखाई दे रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा देह का व्यापार ज्यादा हो रहा है, जो बाहर आता नहीं है। ऐसे बड़ा गुप्त रूप से काम, बहुत गुप्त रूप से सारे संसार को अपनी जकड़ में रखा हुआ है। तो काम हमारी अवस्था को एक सेकंड में, जो जन्म जन्म की कमाई की, जो बाबा कहते तिनका तिनका, जो अभी हमने गाना सुना तिनका तिनका, जो भी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, और उस तिनका तिनका से हम अपने जमा के खाते को बढ़ा रहे हैं, लेकिन काम की एक भी चिंगारी अगर लग जाती है तो हमारी सारी संपत्ति को नष्ट कर देती है, जलाकर राख कर देती है। जैसे सूखे घास को अगर थोड़ी सी भी चिंगारी लग जाए आग की, तो पूरे जंगल को खा कर देती है। ऐसे ही काम की चिंगारी ऐसी है, अगर वो एक भी चिंगारी अगर लग गई तो हमारे सारे पुरुषार्थ, हमारी सारी की कमाई को चट कर देती है। तो कितना सावधानी से चलने की जरूरत है। इतना लंबे समय से पुरुषार्थ करते हैं, साधना करते हैं, ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, लेकिन फिर भी प्राय देखा जाता है लंबे समय के बाद भी, लंबे समय की साधना के बाद भी कई पुरुषार्थ इसके वश में हो जाते हैं। कितनी गहरी जड़ें हैं ये। हाँ जी, राज उसी का है। हाँ जी, साम्राज्य उसने बहुत गहरे से स्थापित कर दिया है। तो इस पर उतना गहराई से, उतना ही होशियारी से, उतना समझ से हमको काम करना है ताकि हमारी की कमाई को चट ना कर दे। एक सेकंड में सारे जन्मों की पुण्य की कमाई खत्म ना हो जाए। जो भविष्य के 21 जन्मों की मंजिल हम निर्माण कर रहे हैं, उस मंजिल को कहीं गिरा ना दे। इसलिए जहां काम है वहां राम नहीं, जहां राम है वहां काम नहीं है। तो सारा खेल स्मृति और विस्मृति का है। तो इन विकारों पर हम ऊपर ऊपर से तो सुन लेते हैं डेली, काम नरक का द्वार है, काम महाशत्रु है, काम हड्डियां तोड़ने वाला है, नुकसानदायक है, लेकिन गहराई से हम काम नहीं करते हैं इसके ऊपर। इसलिए एक एक विकार पर सारे दिन में जो भी श्रृंखला चलेगी, गहराई से पर खुद चिंतन करना, उसका केवल यहां तक सीमित नहीं रखना है, अपने अपने स्तर पर उसका चिंतन करना है, उसको लिखना है और देखना है मेरे में भी कौन कौन सी ऐसी उत्तेजना वाली चीजें हैं जिससे काम भी एक गहरा, या काम भी अपना एक जबरदस्त रूप ले लेता है जिससे मैं प्रभावित होता हूं। तो काम एक, काम को दूसरे शब्दों में कहेंगे हिंसा है। जैसे कहा आत्मा की हत्या है, तो बाबा कहते हैं काम विकार एक हिंसा है। जो हम काम कटारी कहा जाता है, जो हम स्वयं भी उससे मृत्यु को गले, मृत्यु के समीप जाते हैं और दूसरों को भी, दूसरों की भी शक्तियों का ह्रास करते हैं, दूसरों को भी जैसे मृत्यु के समीप ले जा रहे हैं। तो इस हिंसा से बचने के लिए हमें अपना खुद मार्ग तैयार करना पड़ेगा। तो आज सबसे पहले जो काम की परिभाषा है, काम अर्थात मौत। किसकी? स्वयं की मौत या दूसरों की मौत। काम अर्थात अपनी सारी शक्तियों को, जैसे जो लंबे समय से हमने एकत्रित करके रखी हुई है, उसको हम खुद जैसे नाली में बहा रहे हैं, गंदी नाली में बहा रहे हैं। और कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें ये उभर कर बाहर आती है, वो हम सब जानते हैं। तो सबसे पहले है देखना। जैसे हम किसी की देह को देखते हैं, तो हमारी जो संकल्प हैं वो ऐसे ऐसे बीती हुई बातों से एसोसिएट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, जिससे हमारे पुराने संस्कारों की स्मृतियां जागृत हो जाती हैं। क्योंकि पुराने संस्कार तो आत्मा के अंदर ही है, भले वो इस जन्म के नहीं है, पिछले जन्मों के हैं, तो सारे एसोसिएट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं उनसे। और वो फिर सारी पुरानी कामुक वृत्तियां, कामुक संस्कार, वो सारे दृश्य उभरने लगते हैं। इसलिए अगर किसी, कोई हमें दूसरा देह दिखाई भी देता है या देखते भी हैं किसी को, तो उसकी वास्तविकता को समझना है कि ये देह क्या चीज है। ये बाहर से तो बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन अंदर से क्या है ये? जितना ये सुंदर लग रहा है, उतना अंदर में क्या है? अगर अभी अभी हरी एकदम पीली सी बलगम मोटी मोटी आ जाए और हम यहां थूक दें, तो सबको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। तो ये बाहर से दिखावा कुछ और है, अंदर से कुछ और है। और ये तो जो हम कह रहे हैं तो अंदर में है ही है सब कुछ। तुम्हारा सारा खाली जो चिंतन है काम विकार का, ये बाहरी त्वचा तक रहता है। अगर हम इसके अंदर में झांक के देखें, तो उस काम विकार से मुक्ति होना सहज है। कितनी सड़ांध है इसके अंदर भरी हुई, लेकिन फिर भी मनुष्य कितना आकर्षित हो जाता है, कितना उससे चिपका हुआ है। मन का विकार है, जन्म जन्म का है, लेकिन उस जन्म जन्म के विकार से हमको मुक्ति पाने के लिए हमको थोड़ा गहराई से चिंतन करना पड़ेगा। ऊपर से जैसे एक ये बहुत सुंदर सा पॉलीथिन है और उसके अंदर एक में एक गटर का हमने कीचड़ भरा हुआ है, ऐसा ही देह है। और पुराने समय में देह को कहा जा, देह कैसी थी? कंचन काया थी। अभी चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मनी, पद्मावती कहा जाता है, वो पानी या पीते कुछ खाते भी थे तो गले से सब दिखता था जाते हुए थे, तो वो देवताओं की काया कैसी होगी, कैसी कंचन काया होगी। तो इस समय हमको इस विकार से मुक्त होने के लिए इस देह का चिंतन करना अनिवार्य है। तो पहला जो बिंदु है, किन परिस्थितियों में ये क्रिएट होता है काम विकार, देखना। किसी की देह को एक बार हम देख लेते हैं और फिर बार बार उसका हम चिंतन करते हैं तो वो चिंतन गहराई से हमारे चित्त को उद्वेलित कर जाता है, आंदोलित कर देता है। तो देखना तो है ही है, ऐसा तो है नहीं हम आंखें बंद करके चले, संबंध संपर्क में आ रहे हैं, सारे दिन कर्म क्षेत्र में आ रहे हैं, लेकिन देह की वास्तविकता को समझना है उसको, उसका निरंतर चिंतन चलता रहना चाहिए। दूसरा है, ये विकार किन परिस्थितियों में उभरता है? जब हम फुर्सत में होते हैं, एकांत में होते हैं। कई बार क्लासेस में कहा गया है ना, हमारा वास्तविक पुरुषार्थ कब है? जब हम कमरे में अकेले होते हैं, वो हमारा वास्तविक पुरुषार्थ है। उस समय में स्वयं का पता चलता है कि उसमें हम क्या कर रहे हैं, फुर्सत के पलों में ही, क्योंकि आत्मा को इससे भी सुख मिलता है, जन्म जन्म से भोग भोगे हुए हैं, लेकिन इस सुख के पीछे दुख समाया हुआ है, अत्यंत पीड़ा है। वो एक क्षण भर का सुख और जिंदगी भर का दुख, बर्बादी समय हुई है। और इस बर्बादी में धकेलने के लिए मां बाप भी कैसे प्रयास करते हैं, अपने बच्चों को सामाजिक परंपराओं के तहत, पुरातन परंपराओं के तहत जैसे एक रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड कर दिया हुआ है, काम विकार जरूरी है। और इसके लिए वैज्ञानिकों ने भी बहुत मान्यता दी है, इसको सर्टिफाई किया हुआ है। लेकिन जो पुरातन ऋषि हैं, बाबा जिनकी महिमा करते हैं कि जिन्होंने संसार को थमा के रखा हुआ है, पवित्रता के कारण आज की मूल्य में भी है, तो भगवान स्वयं उनकी महिमा कर रहा है। और वो जो शक्ति है काम विकार की शक्ति, जो हम नष्ट कर देते हैं, जिस शक्ति से तेज बढ़ता है, जिस शक्ति से आनंद है, खुशी है, प्राप्ति है, खजाने समाये हुए हैं, उस शक्ति को हम नष्ट कर रहे हैं। तो वो कब होती है? जब हम फुर्सत के पलों में होते हैं। फुर्सत के पल हमारी सारी ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं अगर हम अटेंशन नहीं रखते हैं। उन फुर्सत के पलों में थोड़ा सा भी अगर अटेंशन रखें तो हम फुल चार्ज हो जाएंगे, एकदम एकदम उड़ती कला हो जाएगी, फ्रीडम लाइफ हो जाएगी, आत्मा स्वतंत्र हो जाएगी। इसलिए बताया संगम युग का एक एक पल बहुत अमूल्य है, बहुत कीमती है, इसे हम ऐसे ना खोने दें। तो दूसरा ट्रिगर है फुर्सत के पल। तीसरा है, ये काम विकार कब तंग करता है? जब हम मोबाइल में YouTube खोल के कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। आज के समय में इसकी आवश्यकता बहुत है, लेकिन जैसे हम इसको खोलते हैं इसके साथ बहुत सारी स्मृतियां जुड़ी होती हैं, और वो स्मृतियां, एक सेकंड की स्मृति, एक सेकंड का सीन है, हमारी स्मृतियों को फिर से ताजा कर देता है। इसका उपयोग तो करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उपयोग हमारे लिए बाधा बन जाए, हमारे पुरुषार्थ की हुई कमाई को चट कर दे। और ये रावण की अंतिम चाल है जो सबकी जेब में है, कोई भाग्यशाली होगा जो इसे छूटा हुआ होगा, और ये रखना भी अनिवार्य है, परम सौभाग्य है वो, इसके बिना काम नहीं चलता आजकल। तो देवताओं का शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र था ये, रावण का ब्रह्मास्त्र ये है ये, और ये ब्रह्मास्त्र रावण ने सब पर छोड़ के रखा हुआ है। हाँ बिल्कुल, तो वो हमारे हाथ में है, हम इसको किस तरीके से यूज करते हैं। ये उस चाकू की तरह है जिससे डाकू है वो किसी की हत्या कर सकता है, और डॉक्टर पेशेंट को बचा सकता है। दोनों की राशि ड से शुरू होती है, डाकू और डॉक्टर। तो एक तीसरा है जब YouTube के हम वश में हो जाते हैं, और देखा गया है आजकल छोटे छोटे बच्चे भी इसके वश में हो चुके हैं, इतने एडिक्टेड हो गए हैं, इसके बिना भोजन भी नहीं करते हैं, और माँ बाप भी उनसे इतना परेशान कि जब तक उनको ये मोबाइल नहीं देते तब तक वो उनको भोजन नहीं करना, इसके इसको देखने के बाद ही साथ साथ में भोजन करते हैं। हम एक जगह गए थे पिछले साल में, छोटी सी बच्ची थी, इसके बिना भोजन नहीं करी, रो रो के उसने उत्पात मचा रखा हो इतना, जैसे उसको मोबाइल दे तो बड़ी शांति मिल गई उसको जैसे। हाँ, बच्चे इतने एक्सपर्ट होते हैं कि वो जल्दी जल्दी सर्च कर लेते हैं सब कुछ। तो ये परंपरा स्कूलों में गहराती जा रही है, इसका तूफान काम की आंधी, काम के तूफान से कोई भी बचा हुआ नहीं है, सब पर इसका पूरा प्रभाव पड़ रहा है। और कौन सी परिस्थितियों में काम उभरता है? जब लंबे समय से हम किसी से बातचीत करते हैं, अपनी दोस्ती बढ़ाते हैं, फैमिलियरिटी। इसलिए जो भी यज्ञ की नियम मर्यादाएं हैं उनको बार बार पढ़ना आवश्यक है, कम से कम महीने में एक बार जरूर पढ़े, नहीं तो आजकल तो बस कोर्स किया सेवाओं में चले जाते हैं और वो मर्यादाएं क्या होती हैं बहुत दूर रह जाती हैं। लेकिन पहले हैं जी पता ही नहीं होता कौन कौन सी मर्यादाएं हैं, छोटी छोटी मर्यादाएं हैं जिनसे हम अनभिज्ञ रह जाते हैं और हमारे पुरुषार्थ की स्पीड पर बढ़ नहीं पाती है। तो जो भी हमारे जीवन इस ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं हैं उनको महीने में एक बार रिवाइज करना जरूरी है। सेंटरों में लगी होती हैं मर्यादाएं कौन कौन सी है, लेकिन सूक्ष्म मर्यादाएं भी हैं, ज़्यादा समय तक आपस में बात नहीं करनी है, कौन सी बातों को बढ़ावा नहीं देना है, तो वो सब चीज़ें हैं। अपने नए नए रिश्ते क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि जो बताया ना हमारे जो संकल्प हैं एसोसिएट हो जाते हैं लौकिक से अलौकिक तरफ। जैसे हम यज्ञ में आते हैं तो ऐसे लगता है, जैसे लगता तो ऐसे हमारी फैमिली है, लेकिन लौकिक फैमिली प्रतीत होने लगती है, क्योंकि जैसे कोई सहयोग देता है धीरे धीरे धीरे, तो सोचते हैं ऐसा सहयोग तो हमको घर में नहीं मिलता था, यहाँ मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म में हमारी अटैचमेंट बढ़ती जाती है। तो उसके लिए बाबा के महावाक्य भी हैं, अगर सूक्ष्म में भी लगाव है तो काम विकार का अंश है ये, फिर कामना बढ़ती जाती है, फिर काम की उत्तेजना भी बढ़ती जाती है। तो देखना मुझसे भी कैसे मुक्त रहें। तो इससे संबंधित हम बीच में भी बाबा के संबंध महावाक्य पढ़ेंगे। वैसे तो बहुत सारे बाबा ने महावाक्य उच्चारित किए हैं। जब स्वयं संकल्प बोल व कर्म में हार खाते हो तब दूसरे व्यक्ति व वाइब्रेशन से हार होती है। किसी के भी संबंध व संपर्क से हार खाना ये सिद्ध करता है कि स्वयं बाप से सर्व संबंध जोड़ने में हार खाए हुए हैं, अर्थात हमने बाबा से सारे संबंध नहीं जोड़े हैं, ऊपर ऊपर से हैं। तब किसी संबंध व संपर्क से हार खाते हैं। पवित्रता में हार खाना इसका बीज है किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति के गुण स्वभाव व्यक्तित्व विशेषता से प्रभावित होना। तो ये सब काम विकार के अंश हैं सारे, स्वभाव गुण विशेषता ये सब चीजें प्रभावित अगर हम होते हैं अर्थात हमारे में काम विकार का अंश है। ये व्यक्ति व व्यक्त भाव में प्रभावित होना नहीं है लेकिन बर्बाद होना है। देखो सूक्ष्म में भी अगर हम किसी के ऊपर प्रभावित हो जाते हैं तो जैसे ये बर्बाद होना है, फंस जाते हैं। व्यक्ति की व्यक्तिगत विशेषता व गुण स्वभाव बाप की दी हुई विशेषता है अर्थात दाता की देन है। व्यक्ति पर प्रभावित होना यह धोखा खाना है, धोखा खाना अर्थात दुख उठाना। अपवित्रता की शक्ति मृग तृष्णा समान शक्ति है जो संपर्क व संबंध से बड़ी अच्छी अनुभव होती है, आकर्षण करती है। समझते हैं कि मैं अच्छाई की तरफ प्रभावित हो रहा हूं, इसलिए शब्द यही बोलते हैं कि बहुत अच्छे लगते या अच्छी लगती, इसका गुण स्वभाव अच्छा लगता है, ज्ञान अच्छा लगता है, योग कराना अच्छा लगता है, इससे शक्ति मिलती है, सहयोग मिलता है, स्नेह मिलता है, अल्पकाल की प्राप्ति होती है, लेकिन ये सब धोखा देने वाले हैं। कितना गहराई से चिंतन करने की आवश्यकता है। मना किसी के ऊपर भी जरा भी प्रभावित नहीं होना है, ये सब धोखा देने वाले हैं। देने वाले दाता अर्थात बीज को, फाउंडेशन को खत्म कर दिया और रंग बिरंगी डाली को पकड़कर झूल रहे हैं तो क्या हाल होगा? सिवाय फाउंडेशन के डाली झुलाएगी या गिराएगी? जब तक बीज अर्थात दाता विदाता से सर्व संबंध सर्व प्राप्ति के रस का अनुभव नहीं किया, तब तक कब व्यक्ति से, कभी वैभव से, कभी वाइब्रेशन वायुमंडल आदि भिन्न भिन्न डालियों से अल्पकाल की प्राप्ति का मृग तृष्णा समान धोखा खाते रहेंगे। ये प्रभावित होना अर्थात अविनाशी प्राप्ति से वंचित होना है। पवित्रता की शक्ति जब चाहो, जिस स्थिति को चाहो, जिस प्राप्ति को चाहो, जिस कार्य में सफलता चाहो, वह सब आपके आगे दासी के समान हाजिर हो जाएगी। जब कलयुग के अंत में भी रजो प्रदान पवित्रता की शक्ति धारण करने वाले नामधारी महात्माओं की अब अंत तक की प्रकृति दासी होने का प्रमाण देख रहे हो, अब तक भी नाम महात्मा चल रहा है, अब तक भी पूज्य हैं, अपवित्र आत्माएं झुकती हैं, तो सोचो अंत तक भी पवित्रता के शक्ति की कितनी महानता है कलयुग के अंत में, और परमात्मा द्वारा प्राप्त हुई सतो प्रदान पवित्रता कितनी शक्तिशाली होगी। इस श्रेष्ठ पवित्रता की शक्ति के आगे अपवित्रता झुकी हुई नहीं, लेकिन आपके पांव के नीचे है। अपवित्रता रूपी आसुरी शक्ति शक्ति स्वरूप के पांव के नीचे दिखाई हुई है, जो पांव के नीचे हारी हुई है, हार कैसे खिला सकती है? ब्राह्मण जीवन और हार, हार खाना, इसको कहेंगे नामधारी ब्राह्मण, इसमें अलविले मत बनो। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है पवित्रता की शक्ति। अगर फाउंडेशन कमजोर तो प्राप्तियों की 21 मंजिल वाली बिल्डिंग कैसे टिक सकेगी? यदि फाउंडेशन हिल रहा है तो प्राप्ति का अनुभव सदा नहीं रह सकता, अचल नहीं रह सकते, तो वर्तमान युग को व जन्म की महान प्राप्ति का अनुभव नहीं कर सकते। युग की श्रेष्ठ जन्म की महिमा गाने वाले ज्ञानी भक्त बन जाएंगे। अर्थात समझ है लेकिन स्वयं नहीं है, इसको कहते हैं ज्ञानी भगत। अगर ब्राह्मण बनकर सर्व प्राप्तियों का, सर्व शक्तियों का वरदान या वर्षा अनुभव नहीं किया तो उसको क्या कहेंगे, वंचित आत्मा या ब्राह्मण? इस पवित्रता के भिन्न भिन्न रूपों को अच्छी तरह से जानो, स्वयं के प्रति कड़ी दृष्टि रखो, चलाओ नहीं। निमित्त बनी हुई आत्माओं को बाप को भी चलाने की कोशिश करते हैं, ये तो होता ही है, ऐसा कौन बना है? वह कहते हैं ये अपवित्रता नहीं है, महानता है, ये तो सेवा का साधन है। प्रभावित नहीं है, सहयोग लेते हैं, मददगार है, इसलिए प्रभावित हैं। बाप भूला और लगा माया का गोला, या फिर अपने को छुड़ाने के लिए कहते हैं मैं नहीं करती, यह करते हैं, लेकिन बाप को भूले तो धर्मराज के रूप में ही बाप मिलेगा, बाप का सुख कभी पा नहीं सकेंगे। इसलिए छिपाओ नहीं, चलाओ नहीं, दूसरों को दोषी नहीं बनाओ, मृग तृष्णा के समान आकर्षण में धोखा नहीं खाओ। इस पवित्रता के फाउंडेशन में बाप तथा धर्मराज द्वारा 100 गुना पद्म गुना दंड दिलाता है, इसमें कोई रियायत नहीं हो सकती, इसमें रियायत कभी हो नहीं सकती, इसमें रहम दिल नहीं बन सकते, क्योंकि बाप से नाता तोड़ा तो तब तो किसी के ऊपर प्रभावित हुए। परमात्म प्रभाव से निकल आत्माओं के प्रभाव में आना अर्थात बाप को जाना नहीं, पहचाना नहीं, ऐसे के आगे बाप धर्मराज के रूप में, बाप के रूप में नहीं धर्मराज के रूप में है। जहां पाप है वहां बाप नहीं, तो अलवेले नहीं बनो, इसको छोटी बात मत समझो। वह भी किसी के प्रति प्रभावित होना कामना अर्थात काम विकार का अंश है, बिना कामना के प्रभावित नहीं हो सकते। वह कामना भी काम विकार है, महाशत्रु है, ये दो रूप में आता है, कामना या तो प्रभावित करेगी या परेशान करेगी। इसलिए जैसे नारे लगाते हो काम विकार नर का द्वार, ऐसे अब अपने जीवन के प्रति यह धारणा बनाओ कि किसी भी प्रकार की अल्पकाल की कामना मृग तृष्णा के समान धोखेबाज है। कामना अर्थात धोखा खाना, ऐसी कड़ी दृष्टि वाले इस काम अर्थात कामना पर काली रूप बनो, स्नेही रूप नहीं, बेचारा है, अच्छा है, थोड़ा थोड़ा है, ठीक हो जाएगा, नहीं, विकर्म के ऊपर विकराल रूप धारण करो। किसके ऊपर? स्वयं के ऊपर। तब विकर्म विनाश कर फरिश्ता बन सकेंगे, दूसरों के प्रति नहीं अपने प्रति। योग नहीं लगता तो चेक करो, जरूर कोई छिपा हुआ विकर्म अपने तरफ खींचता है। ब्राह्मण आत्मा और योग नहीं लगे, ये हो नहीं सकता। ब्राह्मण माना एक के हैं, एक ही है तो कहां जाएंगे, कुछ है ही नहीं तो कहां जाएंगे। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं लेकिन और भी काम विकार के बाल बच्चे हैं। बाप दादा को एक बात पर बहुत आश्चर्य लगता है, ब्राह्मण कहता है ब्राह्मण आत्मा पर व्यर्थ व विकारी दृष्टि वृत्ति जाती है, ये कुल कलंकित की बात है, कहना बहन जी व भाई जी और करना क्या है। लौकिक बहन पर भी अगर कोई बुरी दृष्टि जाए, संकल्प भी जाए तो उसे कुल कलंकित कहा जाता है। तो यहां क्या कहेंगे, एक जन्म के नहीं लेकिन जन्म जन्म का कलंक लगाने वाले, राज्य भाग्य को लात मारने वाले, ऐसे पदमुड़ा विक्रम कभी नहीं करना। ये विक्रम महाविक्रम है, इसलिए सोचो समझो संभालो, यही पाप जमदूतों की तरह चिपक जाएंगे। अभी भले समझते हैं बहुत मजे में रह रहे हैं, कौन देखता है कौन जानता है, लेकिन पाप पर पाप चढ़ता जाता है, दाग गहराते जाते हैं और यही पाप खाने को आएंगे। बाप दादा जानते हैं इसकी रिजल्ट क्या है, कितनी कड़ी है। जैसे शरीर से कोई तड़प तड़प कर शरीर छोड़ता है, वैसे बुद्धि पापों में तड़प तड़प कर शरीर छोड़ेगी। सदा सामने पाप के जमदूत रहते हैं, इतना कड़ा अंत है, इसलिए वर्तमान में गलती से भी ऐसा पाप नहीं करना। बाप दादा सिर्फ सन्मुख बैठे हुए बच्चों को नहीं कह रहे हैं लेकिन चारों ओर के बच्चों को समर्थ बना रहे हैं, खबरदार होशियार बना रहे हैं, समझा। अभी तक इस बात में कमजोरी काफी है, ये बाबा की मामा के 84 की मुरली है, 12 अप्रैल 84। हाँ जी, हाँ जी, 12 अप्रैल 84 की मुरली है। ऐसे बहुत सारी मुरलियां हैं, तो बाबा के मां वाक्य को थोड़ा पढ़ेंगे तो एक क्रांतिकारी मुरलियां हैं, जो अंदर में जो ठंडा पड़ा खून है उसको थोड़ा गर्म कर देती हैं। तो अभी हम देखेंगे काम विकार पर विजय कैसे प्राप्त करें, बेसिक किस बातें देखेंगे जो सारे दिन में हम प्रैक्टिकल में कर सकते हैं, सहज रूप से करते हैं, और यही हमारा नेचुरल पुरुषार्थ भी है, इसी के लिए हमारा जीवन है। क्योंकि सारे संसार को जैसे भगवान पावन बनाने के लिए आया हुआ है, हम बच्चे भी उसके मददगार हैं, तो जो उसके कर्तव्य हैं वही हम सब बच्चों का कर्तव्य है। और वो बहुत सहज है, मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अटेंशन देने की ज़रूरत है। तो सबसे पहली बात है, सारे दिन में बीच बीच में ये जो काम विकार है कब उत्तेजित होता है, जब हम अपने को देह समझते हैं। इसलिए सबसे पहला अभ्यास है बार बार अशरीरीपन की प्रैक्टिस करना, अशरीरीपन का अभ्यास एक सेकंड में। अभी सभी एक मिनट के लिए सभी अशरीरी अवस्था का अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे जैसे मैं आत्मा इस देह से बिल्कुल मुक्त हो गई हूँ और नील गगन में विचरण कर रही हूँ और सीधा परम धाम में बाबा के पास पहुँच गई हूँ। सारी शक्तियाँ बाबा मुझ में ट्रांसफर कर रहे हैं। चमकता हुआ सितारा, स्वतंत्र, वो परम ज्योति, मुस्कुराते हुए सारी शक्तियां मुझ में ट्रांसफर कर रही है। मैं सर्व शक्तियों से संपन्न चमकता हुआ सितारा, अपने घर में हूं, उस पवित्र धाम की सारी ऊर्जा, सारा साइलेंस मुझ आत्मा में समाता जा रहा है। फिर वापस अपने देह में, फिर ऊपर वही प्रक्रिया दोहराएंगे। फिर वापस अपने देह में। ओम शांति। तो सबसे पहला है बार बार अशरीरीपन का अभ्यास करना, दूसरा है बॉडी प्यूरिफिकेशन, क्योंकि सारा दिन हमको इस बॉडी में रहना होता है। जिस घर में रहते हैं अगर उस घर की स्वच्छता नहीं है, अगर वहाँ दुर्गंध है, कूड़ा कचड़ा पड़ा हुआ है, तो वहाँ रहना अच्छा नहीं लगता है। इसलिए बॉडी प्यूरिफिकेशन अर्थात बाबा के इस देह को मंदिर समझो। अपनी देह के प्रति भी जो विचार चलते हैं वो जैसे एक भगत में भगत के मूर्ति के प्रति विचार होते हैं, उसी तरह से अपनी देह के प्रति भी ऊंचे विचार, मंदिर जैसे विचार, जैसे मैं चैतन्य मूर्ति देह रूपी मंदिर में विराजमान हूँ और हर्षित मुख हूँ, सर्वगुणों से संपन्न हूँ, इस तरह का चिंतन करते हुए अपनी बॉडी का प्यूरिफिकेशन सारे दिन में करते रहना है, अच्छे अच्छे संकल्पों के साथ। नहीं तो जो संकल्प ही हैं वो हमको प्रभावित करते रहते हैं। तो दूसरा है बॉडी प्यूरिफिकेशन, तीसरा है क्रिएटिव माइंड बनना है, अर्थात पुरुषार्थ के नई नई प्लानिंग तैयार करनी है। और इसके साथ साथ में जो भी हमारे घर में चित्र लगे होते हैं या जो भी हम सारा दिन देखते हैं उनसे थोड़ा दूरी बना के रखनी है, अर्थात सिनेमा से दूरी बना के रखनी है। बाबा कहते हैं सिनेमा अर्थात पाप की माँ। और इसी के साथ क्लॉथ कपड़े जो बहुत महत्वपूर्ण है, आज के परिवेश में अगर देखा जाए तो फैशन कपड़े बहुत प्रभावित करते हैं, क्योंकि पहले इन आंखों से क्या दिखाई देता है, देह और कपड़े दिखाई देंगे। तो हमारे जो विचार हैं उन चीज़ों से, उन परिस्थितियों से एसोसिएट हो जाते हैं जो हमने संसार में देखे हुए हैं। आज सारा अगर मीडिया देखा जाए, सिनेमा देखा जाए, तो किस तरह से उस सामग्री को दोस्तों के सामने परोसता है कि सारे मन मस्तिष्क में वो चीज़ें छप जाती हैं। तो तीसरा है सिनेमा से दूरी बना के रखनी है। क्लॉथ हमारे मर्यादा पूर्वक होने चाहिए, आसपास में जो चित्र हैं जैसे स्लोगन लगे हुए हैं इस तरह के होने चाहिए, या देवी देवताओं के चित्र होने चाहिए, हमारा एम एन ऑब्जेक्ट सामने होना चाहिए, हाँ जी, महापुरुषों के होने चाहिए, पूर्वजों की तस्वीर लगाओ कमरे में। बाबा तो वैसे कहते हैं इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपना पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। चौथा है डिस्टेंस, थोड़ा संबंधों से दूरी बना के रखनी है, अलौकिक संबंधों से भी। नहीं तो देखा जाता है अलौकिकता में लौकिकता बढ़ती जा रही है, उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए जितना जिससे काम हो उतना ही करने का है। विशेष रूप से जब कोई भाई बहन से मिलता है या बहन भाई से मिलती है तो टू दी पॉइंट ही काम हो, इधर उधर की बातें नहीं, आपके घर में कौन है, आप कहाँ से हो, इससे क्या लेने देना है किसी को। नहीं तो धीरे धीरे फैमिलिटी बढ़ती जाती है और वो फिर हमको प्रभावित करती है। तो ऐसा ना हो कि हमारी दूरियाँ ख़त्म होती जाएँ, दूरी बना के रखनी है। नज़दीकियाँ सिर्फ केवल एक ऊपर वाले के साथ ही रखनी है। और चौथा मुख्य, अगर हम इस विकार से मुक्त होना है तो डेली एक्सरसाइज करना अनिवार्य है, और उसमें विशेष योग प्राणायाम, वो हमको बहुत हल्का रखता है, बॉडी को लचीला बनाता है। एक्सरसाइज में 3-4 प्रकार की एक्सरसाइज कर सकते हैं, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, ओम की ध्वनि, भ्रामरी, ये ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट भी करो तो प्राणायाम, तो ये चीज़ें हमको धीरे धीरे हल्का रखती है, योगासन, क्योंकि बॉडी में जो हम डालते हैं भोजन, अगर हम एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं तो वो हमें उल्टे रूप से प्रभावित करता है। इसलिए बॉडी को बड़ा हल्का रखना है, क्योंकि इस देह के अंदर अंदर रहकर हमको साधना करनी है। इस साधना के लिए देह मिला हुआ है। अगर जो देह साधना के लिए मिला हुआ है, ये एक सिंहासन है, जिस सिंहासन पर बैठ के हमको साधना करनी है, वो सिंहासन ही खराब है, वो सिंहासन ही बदबू मार रहा है, उस सिंहासन से ही अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, उस सिंहासन से ही बार बार गैस निकल रही है या अलग अलग विचार आ रहे हैं, तो आत्मा बैठ के ऊपर साधना कैसे करे उसको। इसलिए देह बड़ा कीमती है इसको, इसलिए एक्सरसाइज अनिवार्य है। नेक्स्ट है फूड, भोजन। भोजन के तो हम लंबे समय से सभी चर्चा सुनते हैं, तो जितना हो सके भोजन अपनी अपनी सुविधा के अनुसार पूरा सात्विक, स्लो, साइलेंस में, समझ के साथ, नेचुरल, लिक्विड, कभी घुटने नहीं टेकने उसके आगे, किसी के आगे। हाँ जी, हाँ वो ही अच्छा लग रहा है, बिल्कुल। तो बड़ा समझ के साथ करना है चीजें, हाँ उसका परफेक्ट है। अब हम छोटे लाल भाई को देखते हैं, लंबे समय से उनका भोजन बड़ा संयमित है, नियमित है, बड़ा सात्विक है, बड़ा सिंपल है। कभी भी हमको उनको हमने किचन में नहीं देखा, और समय पर देखा अधिकतर वो सलाद खाते हैं पहले, तो वो हमने देखा वो भले लिक्विड नहीं, लेकिन उनका स्वास्थ्य कभी हमने बीमार भी नहीं होते देखा, उनको संयमित रहते हैं, और कभी भी उनको टाइम वेस्ट करते हुए नहीं देखा। आज भी देखते हैं तो डायरी लेके क्लास में आते, तो डायरी लेके आए, कभी हम नहीं लेके आते तो हमको शर्म आती है कि इतने सालों से देखो ज्ञान में और फिर भी डायरी लिख रहे हैं, कितनी अच्छी वो एक आदत पड़ी हुई है। आंगन में भी देखें आप अकेले होंगे, और अगर फोन से बात भी करें किसी को ज्ञान ही सुना रहे हैं, तो संस्कार कितने अच्छे महान बन गए हुए, ज्ञान के पॉइंट दे देते हैं ताकि कोई दूसरी बात कोई कह रही ना। बाबा ने कहा ना वही बांटते रहो, तो अपने को बिजी कर दिया हुआ है। तो ये ज्ञान का भी भोजन है जो निरंतर बांटते रहना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मोबाइल से व्हाट्सएप से फॉरवर्ड करते रहो और दूसरे वाला तंग हो जाए, वो भी हमको देख के करना है। नेक्स्ट है गॉड ब्लेसिंग, रोज बाबा से वरदान लेना है, विजयी भव का वरदान। सवेरे सवेरे सारी दिनचर्या में हम काम विकार के बशीभूत ना हों, हम परमात्मा छत्रछाया में रहें, तो गॉड ब्लेसिंग। नेक्स्ट है सारे दिन में हायर कॉन्शियसनेस में रहना है, अर्थात अच्छे अच्छे सुमान में स्थित रहना है, चेतना हमारी छोटे छोटे विचारों में प्रभावित ना हो जाए। तो हायर कॉन्शियसनेस के खुद ही हमको नए नए सुमान क्रिएट करने हैं। नेक्स्ट है अंतर्मुखता को बढ़ाते जाना है, क्योंकि हमारे बोल बहुत सारी ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं, और ये ज्ञान का चिंतन हमको अंतर्मुखता की गुफा में ले जाता है। जितना सारे दिन में अपने आप को इसमें बिजी रखते हैं तो हमारी शक्ति बढ़ती जाती है, तो निश्चित रूप से इस विकार से मुक्त हो जाएंगे। नेक्स्ट है जब हम कर्म क्षेत्र पर जाते हैं तो अनेक व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं, तो उस समय हमको क्या सोचना है, अगर कोई किसी का सौंदर्य प्रभावित कर रहा है तो जो जगदीश भाई कहते थे सबको देखते ये सोचो कि ये सभी जिंदा लाशें हैं, ये चलते फिरते मुर्दे हैं, ये इस संसार मुर्दों की दुनिया है, बाबा साकार मूल्य में कहते हैं, तो ये सब जिंदा लाशें हैं, इसलिए किसी से क्या दिल लगाना। हाँ जी, शमशान घाट की तरह ये सब मुर्दे चल रहे हैं इधर, तो ये सारा अंदर से रखना, बोलना नहीं किसी को। नेक्स्ट है क्रांतिकारी विचारों में वृद्धि करनी है। नेगेटिव हर चीज को हम दो पहलू से देखते हैं। अब संसार तो इसको पॉजिटिव तरीके से देखता है, हम इसको नेगेटिव तरीके से देख रहे हैं, तो हर चीज के दो पहलू होते हैं, वो देखना कैसे वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आत्मिक दृष्टि से देख सकते हैं, या फिर उसको जो बाबा कहते हैं सबको इष्ट देव इष्ट देवी के रूप में देखो, ये भी दूसरा पहलू हो सकता है। हाँ जी, ज्वाला देवी के रूप में देखो, हनुमान के रूप में देखो, गणेश के रूप महान आत्मा के रूप में देखो, गणेश के रूप में देखो, काली के रूप में देखो कि सामने काली आ रही है, खंजर हाथ में लिया हुआ है, जो विचार चल रहा है वो सीधा हमारे अंदर घुसेगा भी खंजर। तलवार लेकर देवी दौड़ रही है। तो ये सारा हमारे ऊपर डिपेंड करता है, उस चिंतन को हम कैसे देखते हैं। वो तो बाबा कहते हैं को बुरी बात में भी अच्छाई को आप ढूंढ सकते हो। और नेक्स्ट है क्रांतिकारी विचारों में वृद्धि करनी है, क्योंकि विचारों में नवीनता चाहिए, विचारों में ताकत चाहिए। सामान्य विचारों से हमारी स्थिति भी सामान्य रहती है, इसलिए अपने विचारों को क्रांतिकारी बनाना है। और उसके लिए कहाँ से मिलेंगे क्रांतिकारी विचार? मुरलियों से मिलेंगे। ये जो अभी महावाक्य बाबा के हमने पढ़े हैं, कैसे विस्मृत हो जाते हैं, ऐसे इतनी गहराई से मुरलियाँ हैं, इतनी शक्तिशाली महावाक्यों से सुसज्जित हैं, जो हमारी चेतना को झकझोर देती हैं। वो तो क्रांतिकारी विचारों में वृद्धि करनी है। नेक्स्ट है लिटरेचर को पढ़ना है। लिटरेचर एक तो अपने यज्ञ का, जैसे अब ब्रह्मचर्य के ऊपर किताब है सारी, उसमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ों से अवगत कराया गया है जिससे हम सहज मुक्ति प्राप्त कर सकें, क्योंकि सारा निचोड़ है वैज्ञानिकों के, क्या इसके ऊपर क्या दृष्टिकोण है, धर्मात्माओं का क्या दृष्टिकोण है, वो सारा उसके ऊपर हर तरीके से काम विकार से कैसे मुक्त होना, उस पर सारी चीज़ें डिटेल से बताई हुई हैं। तो लिटरेचर को भी हम अपने जीवन का फ्रेंड बना लें। नेक्स्ट है मुरली मंथन, क्योंकि मुरली मंथन करने से हमारी विचारिक शक्ति बढ़ जाती है, हमारे चिंतन करने की शक्ति बढ़ जाती है। नेक्स्ट है प्रकृति का सानिध्य, बहुत अच्छा है भी। प्रकृति में जाकर थोड़ा शांति से बैठ के सोचो अपने जीवन के बारे में, और प्रकृति सचमुच बहुत सहयोग देती है, लेकिन लंबे समय से प्रैक्टिस करने के बाद। लेकिन वहाँ जाके हम केवल प्रकृति को देखते नहीं रहे, वहाँ थोड़ा गहराई से चिंतन करें, महावाक्यों का अनुसरण करें। अगर चिंतन नहीं होता है तो वहाँ बैठ के थोड़ा मुरली का पैराग्राफ पढ़ो, फिर थोड़ा चलो फिरो, फिर उसको पढ़ो, फिर चलो फिरो, फिर पढ़ो, तो धीरे धीरे हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर होती जाती है, बुद्धि थोड़ा ग्रहण करती है, ग्रहण करने की शक्ति बढ़ जाती है, धीरे धीरे चिंतन की धारा बहने लगती है। तो प्रकृति के सानिध्य में। नेक्स्ट है गुनाहों की माफ़ी, भगवान से माफ़ी मांगनी है, क्योंकि गलतियां तो दिन भर होती रहती हैं, तो सच्चे मन से बाबा से माफ़ी मांग लेनी है। और नेक्स्ट है अपने आप से पूछते रहना बीच बीच में कि मेरा जीवन किस लिए है, बेकारी दुनिया को हम छोड़ के आए, क्या फिर भी मैं बेकारी विचारों में मैं अपने जीवन को बिताता रहूं। अपने आप से पूछो, जरा सोचो अपने आप अपने विषय में कि मेरा दायित्व क्या है संसार के प्रति, क्या उन दायित्वों के ऊपर हम खरा उतर रहे हैं, जो भगवान की हमारे ऊपर अपेक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, क्या उन इच्छाओं के अनुरूप हमारा जीवन चल रहा है। तो क्वेश्चन करना अपने आप से पूछना है। नेक्स्ट है जी अपने आप से बात करनी है। नेक्स्ट है रिलेशनशिप, बाबा से सर्वसंबंधों की अनुभूति, ऊपर ऊपर से हम कहते हैं, लेकिन उससे सबसे बढ़िया अनुभूति करने का साधन है लिखो संबंधों से, क्योंकि जो हम बोलते हैं वो इतना गहराई से अनुभव नहीं होता है। बाबा मेरे माता भी हो, पिता भी हो, बच्चा भी हो, तो थोड़ा सिमट जाता है, लेकिन एक एक संबंध के ऊपर अगर लिखेंगे तो 10-10 पेज लिखे जाएंगे, एक दिन में एक ही संबंध को निभाओ वाले। और संबंधों की लिस्ट निकाली थी इधर, 108 संबंधों की लिस्ट, अष्टनी 108, आठनी 108 संबंधों की लिस्ट। तो संबंधों के ऊपर, अगर बाबा मेरा सुरक्षा गार्ड है तो किस तरीके से वो मेरे साथ रहता है, कैसे वो मेरी सुरक्षा कर रहा है, कैसे वो छत्रछाया बनकर मेरे साथ साथ रहता है। तो रिलेशनशिप। नेक्स्ट है साइलेंस, थोड़ा साइलेंस का भी अभ्यास चाहिए, क्योंकि बाचा में हम बहुत चले जाते हैं, तो बाचा में जाने से हमारी शक्तियां चली जाती हैं बहुत सारी। बाचा में अर्थात वो ऐसी बातें जिन बातों का इस जीवन से कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, ऐसी बहुत सारी मुख से बातें निकल जाती है। कल के मुरली में था ना, कई संसार में तो कई लोग जो गाली से शुरू करते हैं, बात को शुरू करते गाली से ही, उनका जैसे एक आदत ही बन गई है। और इस ब्राह्मण जीवन में हमने देखा कुछ दिन पहले, अब बहन ही थी, बहन के शब्द से ऐसा मुख निकल गया स्टार्टिंग में, और वही पुरानी बहन, तुम्हारा अटेंशन नहीं है इसका अर्थ, वो शब्द हम बोलना हमको भी खराब लगता है, लेकिन वो सामान्य रूप से बार बार यूज आ रहा है उसको, और उसको पता भी नहीं चल पा रहा है। अब उसको हम कैसे कहें बहन जी ऐसे, वो पुरानी बहन बेहोशी है, तो वो बड़ा निकल जाता है शब्द ऐसे छोटी छोटी सूक्ष्म गालियां, जैसे उनको सामान्य शब्द समझ के रखा हुआ है। तो साइलेंस। नेक्स्ट है तपस्या, अपनी साधना को बढ़ाना है, छोटे छोटे साधना का प्रयोग करने है। सारे दिन में 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, 5-7 मिनट ऐसे साधना अलार्म लगा के रख लो और 5 मिनट एक ही संकल्प में बैठ जाओ, उसी संकल्प के इर्द गिर्द हमारा मन घूमता रहे, चिंतन चलता रहे, तो तपस्या को बढ़ाना। नेक्स्ट है उमंग उत्साह को कभी कम नहीं होने देना है। नेक्स्ट है टाइम कभी वेस्ट नहीं करना है। टाइम हमारे हाथ में एक बहुत बड़ा धन है, ये अमूल्य संपत्ति है, एनर्जी है, तो इस ऊर्जा का संरक्षण करना है। तो हमने कितनी सारी बातें देखी काम विकार से मुक्ति के लिए, तो काम को साधारण शत्रु नहीं समझना है, बड़ी निर्दयता से इसका सामना करना है, गला काटना है इसके। ऐसा नहीं है कि एक शत्रु को थोड़ा सा भी अगर हमने ढील दे दी तो शत्रु हमारे जीवन को तहस नहस कर देगा। इसलिए सूक्ष्म रूप से भी कामना के जो अंश बढ़ते जा रहे हैं, किस तरीके से काम हमारी ऊर्जा को नष्ट करता जा रहा है, ये हमें स्वयं परिदृष्टि रखनी है और इसके ऊपर कमेंट्री लिख सकते हैं अपने अपने तरीके से कैसे हम काम से मुक्ति पाएं। तो ये 4 तथ्यों पर आधारित इस भट्ठे के जो आगामी 108 दिन रहेंगे, तो सभी उसमें हम सब गहराई से, पूरे मनोयोग से, पूरे दिलो जान से, अपनी अपनी सच्चाई सफाई से, क्योंकि ये बार बार हमको एक अच्छा पुरुषार्थ करने का मौका बाबा दे रहा है। ये दिन भी बीत जाएंगे, बाद में ये भी नहीं दिन आएंगे। हम इस यज्ञ को देखते हैं कितने जल्दी जल्दी बीत गया, अब थोड़े साल से तो हमको ज्ञान में आए, लेकिन इन थोड़े से वर्षों में भी कितना महान परिवर्तन हो गया सब। हाँ जी, थोड़े समय में, हाँ, मधुबन के आंगन की जो रौनक थी, रौनक तो अभी भी है, लेकिन जो है जी, जो पहले दादी आंगन में बैठी रहती थी, एकदम ऐसे लगता है जैसे पूरा परम धाम ही नीचे उतरा है, सूक्ष्म पत्नी नीचे उतरा है। तो वो भी दिन थे प्यारे, ये भी दिन बहुत प्यारे हैं। हम रात को शाम के टाइम में इधर क्लास में बैठते हैं तो कभी कभी चिंतन करते हैं कितना परम सौभाग्य है कि हम भगवान के महावाक्यों के साथ, ज्ञान रत्नों के साथ खेल रहे हैं। ये भी दिन बीत जाएंगे। डॉक्टर साहब कितने वर्षों से आ रहे हैं, उस समय का देखो तो डॉक्टर साहब काल ही अनुभव बता रहे थे कि कैसे हमारी जीवन शैली एकदम बदल गई है। सवेरे मॉर्निंग में अपने आप आंख खुल जाती है, दिन में इतना थक जाते हैं लेकिन अमृत वेला इतना एनर्जी भर जाती है, इतनी एनर्जी भर जाती है, तो ये किसकी कृपा है? ये सब कृपा का इसमें बाद में पूरा हो जाएगा। हाँ, तो ये पहाड़ी थी, तो जिस देखो उन आत्माओं की त्याग तपस्या बलिदान का बदौलत हम सबको ये चीजें मिल रही हैं, जो बना बनाया मक्खन है उनको दुआएं मिल रही हैं। तो सूक्ष्म रूप से हमारे संकल्प भी इतने शक्तिशाली हों जो सारे संसार की आत्माओं की सूक्ष्म दुआएं हम अर्जित कर सकें, क्योंकि सबसे बड़ी सेवा कौन सी है? बाबा कहते मनसा सेवा है, जो सबके बस की बात नहीं है, चूंकि हम ब्राह्मण बच्चे कर सकते हैं, तो केवल अपने संकल्पों का तो शुद्धिकरण करना है। जितना हमारी संकल्प शक्ति बढ़ती जाएगी, संकल्प शक्ति में ताकत आ जाएगी, सकारात्मक होती जाएगी, उतना मनसा वाइब्रेशन भी हम संसार को दे सकेंगे, दूसरी आत्माओं को भी अनेक प्रकार के बंधनों से मुक्त कर सकेंगे। तो ये पुरुषार्थ की लहर, इसका हमको खूब फायदा ले जाना है, लेते रहना है, पता नहीं समय कब क्या दिखा देगा, कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, ओम शांति।
अपना अनुशासन जीवन की परिभाषा। अपने से अपना अनुशासन जीवन की परिभाषा। वर्ण जाति या संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा। छोटे छोटे संकल्पों से छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए, मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए। समता सह अस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए। शुद्ध साध के लिए नियोजित, शुद्ध साध के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो, संयम में जीवन हो, संयम